एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्ते।
आज के ज्ञान गोष्ठी में हम एक बहुत ही दिलचस्प और शायद थोड़ी चौंकाने वाली किताब पर बात करने वाले हैं।
नमस्ते। हाँ बिल्कुल, किताब का नाम है द गिफ्ट ऑफ फियर, यानी भय का उपहार। लिखने वाले हैं गैविन डी बेकर।
और ये नाम ही अपने आप में सोचने पर मजबूर करता है ना? मतलब डर एक तोहफा कैसे हो सकता है? हम तो हमेशा डर से दूर भागते हैं।
सही बात है, लेकिन यही इस किताब की खासियत है। ये डर को एक दुश्मन की तरह नहीं, बल्कि एक जरूरी सिग्नल, एक तरह का सुरक्षा कवच मानती है।
खासकर आज के जमाने में जहां हम अपनी सुरक्षा को लेकर इतने फिक्रमंद रहते हैं, ये किताब हमारी इंट्यूशन, हमारी अंदर की आवाज पर भरोसा करने की बात करती है।
बिल्कुल, वो गट फीलिंग जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं, ये सोचकर कि हम ज्यादा सोच रहे हैं या शायद विनम्र बने रहना चाहिए।
हाँ, और ये किताब कहती है कि हिंसा अक्सर अचानक नहीं होती, उसके संकेत पहले से मौजूद होते हैं, बस हमें उन्हें पहचानना सीखना है।
तो चलिए पहले गैविन डी बेकर के बारे में थोड़ा जानते हैं। ये कौन है?
ये कोई मामूली लेखक नहीं है। गैविन डी बेकर अमेरिका में हिंसा की भविष्यवाणी और प्रबंधन के मतलब सबसे बड़े नामों में से एक माने जाते हैं।
हाँ, उनकी एक्सपर्टीज सिर्फ किताबी नहीं है, दशकों का प्रैक्टिकल अनुभव है उनके पास, हाई प्रोफाइल केसेस में काम करने का अनुभव।
उन्होंने एक कंपनी बनाई, गैविन डी बेकर एंड एसोसिएट्स या GDBA। ये बड़ी बड़ी हस्तियों, कंपनियों, यहाँ तक कि सरकारों को भी सुरक्षा सलाह देती है।
सोचिए जरा, और उन्होंने एक सिस्टम भी डेवलप किया है, मोजाइक नाम का। ये थ्रेट असेसमेंट सिस्टम है जिसका इस्तेमाल CIA और अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्थाएं भी करती हैं। तो हाँ, वो इस विषय के माहिर हैं।
लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लगी वो है उनका अपना बैकग्राउंड। उनका बचपन बहुत मुश्किल था, हिंसा भरे माहौल में बीता
है ना। ये बात उनके काम को और ज्यादा वजन देती है। उन्होंने अपनी माँ को आत्मरक्षा में अपने सौतेले पिता पर गोली चलाते देखा था, इतनी कम उम्र में।
बाप रे, ये अनुभव तो किसी को भी तोड़ दे, लेकिन उन्होंने इसे एक तरह से अपनी ताकत बनाया, मानव व्यवहार और हिंसा को समझने की एक गहरी दृष्टि विकसित की।
बिल्कुल, तो ये पर्सनल एक्सपीरियंस और प्रोफेशनल महारत का जो संगम है, वही द गिफ्ट ऑफ फियर को इतना पावरफुल बनाता है। वो सिर्फ थियरी नहीं बता रहे, वो जिया हुआ सच बता रहे हैं।
अच्छा, तो अब आते हैं किताब के मेन आइडिया पर। ये किताब आखिर कहना क्या चाहती है?
बेसिकली ये पर्सनल सेफ्टी के लिए एक गाइड है, पर ये सिर्फ टिप्स और ट्रिक्स की लिस्ट नहीं है। ये डर के साथ हमारे रिश्ते को बदलने की कोशिश करती है।
मतलब डर को देखने का नजरिया बदलने की।
हाँ, इसका सबसे बड़ा मकसद है हमें असली सहज डर, वो गट फीलिंग, और बेवजह की चिंता मतलब एंजाइटी के बीच फर्क करना सिखाना।
अच्छा, ये फर्क समझना जरूरी क्यों है?
क्योंकि सच्चा डर डी बेकर के मुताबिक एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड सर्वाइवल सिग्नल है। ये फिजूल नहीं है, ये तब आता है जब वाकई कोई खतरा हो।
और किताब ये भी कहती है कि हिंसा अचानक नहीं होती।
बिल्कुल, वो कहते हैं कि हिंसा से पहले लगभग हमेशा कुछ चेतावनी संकेत होते हैं, इन्हें वो पिन्स कहते हैं, प्री इंसिडेंट इंडिकेटर्स।
पिन्स यानी घटना से पहले के सूचक।
हाँ, और हमारी इंट्यूशन इन पिन्स को पहचान सकती है। दिक्कत यह है कि हमारा समाज, हमारी कंडीशनिंग हमें इन सिग्नल्स पर शक करना सिखाती है।
हाँ, जैसे हमें सिखाया जाता है कि हमेशा विनम्र रहो, किसी को नाराज मत करो, हर चीज का लॉजिक ढूंढो।
एग्जैक्टली, और इस चक्कर में हम अपनी अंदर की आवाज को दबा देते हैं। खासकर महिलाओं को अक्सर सिखाया जाता है कि दूसरों की भावनाओं का ख्याल अपनी सुरक्षा से ज्यादा रखें।
सच बात है, ना कहने में झिझकना या किसी अजीब सिचुएशन से इसलिए नहीं निकलना कि सामने वाला बुरा मान जाए।
और अपनी इंट्यूशन पर भरोसा करने का अधिकार देती है। ये डरे सहमे रहने की बजाय जागरूक और कॉन्फिडेंट रहने की बात करती है।
ये तो बहुत जरूरी बात है। चलिए थोड़ा और अंदर चलते हैं, ये डर का तोहफा काम कैसे करता है? किताब में केली का एक उदाहरण है ना?
हाँ, केली का केस स्टडी है। उस पर उसके अपार्टमेंट बिल्डिंग में हमला हुआ था, और बाद में उसने महसूस किया कि जब उस अजनबी ने उसे सामान उठाने में मदद की पेशकश की थी, तभी उसे अंदर से कुछ ठीक नहीं लगा था, एक बेचैनी थी
जिससे उसने नजरअंदाज कर दिया।
हाँ, क्योंकि वो विनम्र दिखना चाहती थी, शक नहीं करना चाहती थी। यही वो अंदर से ठीक न लगना है जिसे डी बेकर इंट्यूशन कहते हैं।
और ये इंट्यूशन कोई जादू टोना नहीं है?
नहीं, बिल्कुल नहीं। डी बेकर जोर देते हैं कि यह हमारे दिमाग की बहुत तेज कॉग्निटिव प्रोसेस है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड लगातार जानकारी जमा करता है, पैटर्न देखता है, कुछ अलग या अजीब नोटिस करता है,
और जब कुछ गड़बड़ लगती है तो वो सिग्नल भेजता है।
हाँ, वो सिग्नल एक फीलिंग हो सकती है, पेट में कुछ महसूस होना, या बस एक शक। ये डेटा प्रोसेसिंग है, बस बहुत तेजी से होती है।
तो इंट्यूशन हमें बताती है कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन वो कुछ क्या है, यहाँ पिंस का रोल आता है।
बिल्कुल, पिंस वो तरीके या व्यवहार हैं जिनका इस्तेमाल कोई नुकसान पहुंचाने वाला व्यक्ति कर सकता है भरोसा जीतने के लिए, कंट्रोल करने के लिए या फंसाने के लिए। इन्हें पहचानना बहुत जरूरी है।
कौन कौन से पिंस हैं जिन पर किताब जोर देती है?
कई हैं, पर कुछ मुख्य हैं। पहला है फोर्स टीमिंग, यानी जबरदस्ती टीम बनाना।
ये क्या होता है?
इसमें कोई व्यक्ति जानबूझकर हम या हम लोग जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके एक झूठा कनेक्शन बनाने की कोशिश करता है। जैसे कोई अजनबी कहे, अरे हम दोनों ही फंस गए इस ट्रैफिक में, जबकि कोई असली कनेक्शन नहीं है।
अच्छा, एक बनावटी अपनापन दिखाना।
हाँ। दूसरा है चार्म एंड नाइसनेस, यानी आकर्षण और अच्छाई का दिखावा। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है।
हाँ, क्योंकि अच्छा दिखना तो अच्छी बात है,
लेकिन डी बेकर कहते हैं कि चार्म एक एक्शन है, कोई स्थायी गुण नहीं। इसका इस्तेमाल मैनिपुलेशन के लिए हो सकता है, ताकि सामने वाला अपनी गार्ड नीचे कर दे। सच्ची अच्छाई को दिखावे की जरूरत नहीं होती।
ये ध्यान रखने वाली बात है। और तीसरा?
तीसरा है टू मेनी डिटेल्स, बहुत ज्यादा जानकारी देना। जब कोई झूठ बोल रहा होता है तो उसे लगता है कि ज्यादा डिटेल देने से कहानी सच्ची लगेगी।
अच्छा, तो वो जरूरत से ज्यादा सफाई देने लगता है।
हाँ, अप्रासंगिक बातें बताने लगता है। ये एक रेड फ्लैग हो सकता है।
और चौथा, जो शायद सबसे अहम है?
हाँ, वो है डिस्काउंटिंग द वर्ड नो, यानी नहीं को अनदेखा करना।
ये तो सीधा है।
बहुत सीधा। अगर कोई आपके इनकार को स्वीकार नहीं करता, आपकी बाउंड्री को नहीं मानता, तो वो आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है।
यहीं पर वो फेमस लाइन आती है, नहीं एक पूर्ण वाक्य है।
कोई सफाई, कोई लंबी कहानी सुनाने की जरूरत नहीं है,
सिर्फ नहीं कह देना काफी है।
हाँ, और जो व्यक्ति इसे नहीं सुनता, वो आपकी इच्छाओं का सम्मान नहीं कर रहा है। ये एक बहुत बड़ा चेतावनी संकेत है।
और ये प्रिंसिपल सिर्फ अजनबियों के साथ ही लागू नहीं होते।
नहीं, बिल्कुल नहीं। किताब इन्हें घरेलू हिंसा जैसी स्थितियों पर भी लागू करती है। डी बेकर बताते हैं कि ये अक्सर कंट्रोलिंग बिहेवियर से शुरू होती है,
जैसे पार्टनर का फोन चेक करना या दोस्तों से मिलने पर रोक लगाना।
हाँ, और ये धीरे धीरे इमोशनल या फिजिकल वायलेंस तक बढ़ सकता है। और दुख की बात यह है कि ऐसे रिश्ते को छोड़ने का समय अक्सर सबसे खतरनाक होता है, इसलिए प्लानिंग जरूरी है।
स्टॉकिंग के बारे में भी किताब बात करती है।
हाँ, और साफ करती है कि स्टॉकिंग प्यार नहीं बल्कि कब्जा और कंट्रोल है। स्टॉकर को किसी भी तरह का रिएक्शन, गुस्सा, डर, कुछ भी उसे बढ़ावा देता है।
तो उपाय क्या है?
पूरी तरह से संपर्क तोड़ना, एक दृढ़ आखिरी नहीं, कोई बातचीत नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं।
बच्चों की सुरक्षा पर भी किताब जोर देती है। हम अक्सर कहते हैं अजनबियों से बात मत करो।
हाँ, लेकिन डी बेकर कहते हैं कि ज्यादातर खतरा परिचित लोगों से होता है, अजनबियों से नहीं, इसलिए सिर्फ ये नारा काफी नहीं है।
तो फिर क्या करना चाहिए?
बच्चों को उनकी इंट्यूशन पर भरोसा करना सिखाना ज्यादा जरूरी है। उन्हें ये बताना कि अगर कोई बड़ा, चाहे वो रिश्तेदार हो, टीचर हो, कोई भी उन्हें असहज महसूस कराता है, तो उनकी वो फीलिंग सही है।
और उन्हें नहीं कहने का अधिकार देना।
बिल्कुल, भले ही सामने वाला बड़ा हो, उन्हें ये सिखाना कि उनकी सुरक्षा सबसे पहले है, किसी की नाराजगी से भी ज्यादा।
तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो मुख्य संदेश क्या निकलते हैं? पहला तो यही कि डर हमारा दोस्त है, दुश्मन नहीं।
हाँ, बिल्कुल। सच्चा डर एक गिफ्ट है, एक अलर्ट सिस्टम है। इसे सुनना सीखें, ये कमजोरी नहीं, ताकत है।
दूसरा कि हिंसा का अंदाजा लगाया जा सकता है, वो पिंस मौजूद होते हैं।
हाँ, हिंसा रैंडम नहीं होती है। अगर हम संकेतों को पहचानना सीख लें तो हम खुद को बचा सकते हैं। ये हमें लाचार महसूस करने से बचाता है।
तीसरा, अपनी इंट्यूशन पर भरोसा सबसे जरूरी है। समाज चाहे जो कहे, अपनी गट फीलिंग को नजरअंदाज ना करें।
बिल्कुल, वो हमारी सबसे भरोसेमंद गाइड हो सकती है।
और चौथा, नहीं एक पूरा वाक्य है। सीमाएं बनाना और उन्हें कायम रखना, ये हमारे समाज में जहां ना कहना मुश्किल होता है और भी जरूरी है।
हाँ, ये सिर्फ सुरक्षा नहीं, मानसिक शांति के लिए भी जरूरी है, बिना किसी गिल्ट के ना कहना सीखना।
और पांचवा, इनकार या डिनायल के खतरे से बचना।
एग्जैक्टली। कई बार हम सच देखना नहीं चाहते क्योंकि वो मुश्किल होता है। ऐसा नहीं हो सकता, मैं ज्यादा सोच रही हूँ, ये डिनायल ही शिकारी की मदद करता है। असहज सच का सामना करना जरूरी है।
इस किताब में कई ऐसी बातें हैं जो सोचने पर मजबूर करती हैं। कुछ कोट्स बहुत पावरफुल हैं।
हाँ, बिल्कुल। जैसे पहला तो वही, नो इज अ कंप्लीट सेंटेंस। छोटा सा वाक्य पर कितना गहरा मतलब है। ये हमें अपनी बाउंड्रीज सेट करने की इजाजत देता है।
सही कहा। और इंट्यूशन के बारे में वो कोट?
हाँ, इंट्यूशन इज ऑलवेज राइट, in at least two important ways. It is always in response to something, and it always has your best interest at heart. मतलब आपकी गट फीलिंग हमेशा किसी वजह से होती है और हमेशा आपके भले के लिए होती है।
ये जानकर तसल्ली मिलती है, मतलब अगर कुछ अजीब लग रहा है तो वो यूं ही नहीं है।
बिल्कुल। और तीसरा जो डिनायल पर था, डिनायल इज अ सेव नाउ पे लेटर स्कीम।
यानी अभी बच जाओ बाद में कीमत चुकाओ। कितनी सटीक बात है। चेतावनी को नजरअंदाज करना बाद में भारी पड़ सकता है।
तो ये सब बातें सिर्फ थ्योरी नहीं है, इन्हें हम अपनी रोज की जिंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं।
कैसे?
जैसे पब्लिक प्लेस में, हाँ, मेट्रो में, बाजार में, सड़क पर अपनी इंट्यूशन पर ध्यान दें। अगर कोई या कुछ अजीब लगे तो उसे डेटा की तरह लें, नजरअंदाज ना करें। थोड़ा ज्यादा अलर्ट हो जाएं, देखें कि कहीं कोई पिंस तो नहीं दिख रहे।
और रिश्तों में?
बिल्कुल, दोस्ती, प्यार, काम की जगह, हर जगह क्या सामने वाला आपकी ना सुनता है, आपकी सीमाओं का सम्मान करता है, क्या कंट्रोल करने की कोशिश करता है। ये शुरुआती संकेत हो सकते हैं और नहीं कहने की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है।
बच्चों के लिए भी माता पिता इन बातों का इस्तेमाल कर सकते हैं, उन्हें उनकी फीलिंग्स पर यकीन करना सिखाना।
हाँ, उन्हें ये बताना कि अगर उन्हें कुछ ठीक नहीं लग रहा तो उन्हें नहीं कहने या वहां से हटने का पूरा हक है। ये उन्हें सेफ रखता है।
और ये सिर्फ फिजिकल सेफ्टी तक ही सीमित नहीं है, है ना?
नहीं, जीवन के दूसरे फैसलों में भी, जॉब, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट, अगर गट फीलिंग कुछ कह रही है तो उस पर ध्यान देना अक्सर फायदेमंद होता है। रुकें और जानकारी लें, सवाल पूछें।
मेरे लिए तो इस पूरी चर्चा से सबसे बड़ी सीख यही रही कि डर को एक पॉजिटिव चीज के तौर पर भी देखा जा सकता है। ये मेरे लिए एक आहा मोमेंट था।
और मेरे लिए ये जानना कि हिंसा का अनुमान लगाया जा सकता है और उसे पहचानने की शक्ति हमारे अंदर ही है, हमारी इंट्यूशन में, ये बहुत एम्पावरिंग लगता है। ये असहाय महसूस नहीं कराता। अच्छा, एक विचार श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। अगर हम इन पिंस को सिर्फ फिजिकल सेफ्टी नहीं बल्कि अपनी रोजमर्रा की बातचीत, रिश्तों और काम की जगहों पर भी पहचानना सीख जाएं, तो हमारी दुनिया देखने और उसमें जीने का तरीका कितना बदल सकता है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एक क्षेत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।